بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم مجھے میرے دوستوں نے اور خاص طور سے میرے مہربانوں نے فورس کیا ہے زور دیا ہے اصرار کیا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ضرور بولیں گے یقین کیجیے اللہ گواہ ہے میں اس سے پہلے بہت معافی مانگ چکا ہوں بڑا اصرار انکار کر چکا ہوں کہ مجھے کچھ بھی نہیں کہنا ہے پر انہوں نے کہا نہیں آپ نے ضرور کہنا ہے میں نے گھڑی بھی ان کو دکھائی ٹائم بھی منہ سے بول کے بتایا لیکن وہ کہتے ہیں بہرحال آپ نے کچھ کہنا ہی کہنا ہے تو میں آپ حضرات کے سامنے چند منٹوں کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس تھوڑے سے وقت میں مجھے کچھ کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے دوستو تین یا چار چیزیں میں کہوں گا اور بالکل باتوں سے ہٹ کر کہوں گا ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بھی کسی بات کو پڑھیں سنیں یا سننے کے لیے جائیں یا پڑھنے کی نیت سے کوئی کتاب اٹھائیں تو یہ نیت ضرور کر لیں کہ ہم نے اس لیے اس کو پڑھنا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے جب بھی کوئی بات پڑھیں یا سننے کے لیے جائیں بعض لوگ کتاب اٹھاتے ہیں تو کتاب اٹھاتے کے وقت اس کی نیت ہی ہوتی ہے کہ چلو مطالعہ کر لیتے ہیں ہماری معلومات میں اضافہ ہو جائے گا بس معلومات میں اضافے کی حد تک کے لیے وہ کتاب اٹھاتے ہیں یا کوئی بیان سننے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں چلو جی مجمع ہے گیدرنگ ہے دیکھ لیں گے سن کے آ جائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارا سن لینے کے بعد بھی انسان کو اس پر عمل نصیب نہیں ہوتا اس لیے کہ پہلے دن سے اس نے صرف سننے کی نیت کی تھی عمل کی نیت نہیں کی تھی تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جب بھی کوئی کتاب پڑھیں مطالعہ کریں کسی درس میں جائیں کسی پروگرام میں جائیں تو اس نیت کے ساتھ جائیں کہ ہم نے سننے کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے یقین کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اول تو عمل کی نیت پر آپ کو نیکی دیتے ہیں اور دوسرا اس نیت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے عمل آسان فرما دیتے ہیں یہ دیکھا ہے بارہا دیکھا گیا ہے کہ جب عمل کی نیت سے جائیں گے تو ایک تو نیکی ملے گی اور دوسرا اللہ تعالیٰ عمل کو بھی آسان کر دیتے ہیں اس لیے ہمیشہ جب کہیں جائیں کوئی کتاب پڑھیں کوئی واعظ سنیں تو یہ نیت کر لیں کہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی جائیں جب کوئی کتاب پڑھیں جب کوئی کتاب سنیں تو یہ ضرور دیکھ لیں ہمیشہ کہ ہم باتوں کے سننے میں بھی اور پڑھنے میں بھی کتاب کا بھی ہو یا سننے کا ہو احترام اور اس بات کو عظمت اور احترام کے ساتھ سنیں اس لیے کہ جو بات عظمت اور احترام کے ساتھ سنی جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سننے پر بھی اسے اجر دیتے ہیں اور اس سننے والے کو بھی اس کے عظمت کی وجہ سے اللہ محروم نہیں کرتے بہت ساری جگہ ہم نے یہ دیکھا ہے باتیں ہو رہی ہے کتنی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہے بڑے بڑے مقررین بیان کرنے والے ہوتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو لوگ اس بات کو عظمت اور احترام کے ساتھ نہیں سنتے کبھی پاؤں پھیلایا ہوا ہے کبھی باتیں کرتے رہتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں تو جو مجلس کی اور کتاب کے پڑھنے کی جو عظمت اور احترام ہونا چاہیے وہ احترام نہیں ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے اس کو معلوم رکھتے ہیں لہذا ہمیشہ کوشش یہ ہو کہ جب کوئی کسی مجلس میں جائے تو دین کی بات بالخصوص دین کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہو तो आप उसको एहतराम और अजमत के साथ सुनें। एक बूढ़ी का इंतकाल हो रहा था, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी और थी कौन घर में काम करने वाली थी, हमारे मुल्कों में झाड़ू देने वाली थी, कपड़े साफ करने वाली थी, दीवारें जमीन साफ करने वाली थी, बिल्कुल मामूली नौकरानी थी, मुसलमान थी। उसका इंतकाल हो रहा था तो इंतकाल के वक्त अरबी जबान में बात करें, घर वालों को अरबी आती नहीं थी। बड़े हैरान और परेशान कि औरत जो मामूल के बस नमाजें पढ़ती है और छोटा मोटा काम कर लेती है, कभी उसने ज्यादा तालीम भी हासिल नहीं की, मरने के वक्त अरबी कहां से बोलती है। कुछ अरबी बोल रहे थे, घर वालों को समझ में नहीं आ रही थी, तो घर वाले मस्जिद के इमाम साहब को बुला के लाए, क्या आए और सुने ये कुछ अरबी में बात कर रही, क्या बात कर रही। चुनांचे जब वो मौली साहब आए तो मौली साहब ने सुना तो समझ गए, तो मौली साहब उसे कहते हैं कि उनसे पूछो, अरबी में कहते हैं उनसे पूछो कि मुझे ये मकाम क्यों मिला, उनसे पूछो। मौली साहब समझ गए कि किसी के साथ कम्युनिकेट कर रही है, बात कर रही है, तो कहा इनसे पूछो कि मुझे ये मकाम क्यों मिला। तो उसने मौली साहब को जवाब दिया, वो क्या था, वो क्या कह रही थी पहले। वो घर वाले मौली साहब को बुला के लाए तो मौली साहब से कहा सुनो ये क्या कहते हैं, तो मौली साहब ने कहा क्या कहती है, उन्होंने कहा हाजा ने रजुलाने यकूलाने उदखुली जन्ना, मैं दो आदमी को देख रहे हूँ और ये दो आदमी ये कह रहे हैं मुझे कि तू जन्नत में दाखिल हो गया, हम तुझे जन्नत में दाखिल करने के लिए लेने के लिए आए हैं, लिहाजा तू जल्दी से तेरा इंतकाल हो जाएगा तो हम जन्नत में तुझे ले जाएंगे। तो मैंने इनसे कहा पूछो मुझे दर्जा क्यों मिला, तो उसने उनको पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हें ये दर्जा इसलिए मिला कि जब तू अजान होती है तो जब जैसे ही अजान की आवाज तेरे कान में पड़ी तू भी चुप हो जाती है, जिस काम में मशगूल हो उस काम को बंद करके अजान के जवाब में मशगूल हो जाती है और घर वालों को भी कोई काम करने नहीं देती, तो अल्लाह के मुनादी के निदा के एहतराम और अजमत में तू खामोश हो जाती थी, तो अल्लाह सुबहानहू व तआला ने इसका सिला तुझे ये दिया कि मरने के बाद तुझे अल्लाह पहले दर्जे में जन्नत का दाखिला नसीब कर। सिर्फ दीन के एहतराम, एक अजान के एहतराम के नतीजे में, और शेख उल औलिया हजरत मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जो शख्स अजान के वक्त चुप हो जाए, अजान के एहतराम में, अजान के एहतराम में खामोश हो जाए, चुप हो जाए कि अजान हो रही अब मैंने कोई बात नहीं करनी, कोई काम नहीं करना, तो शेख उल औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे मैं गारंटी देता हूं कि अल्लाह सुबहानहू व तआला इस शख्स का खात्मा ईमान पे कर रहे हैं। और कहा जो शख्स अजान के दौरान बात करता है, दुनिया की बात करता है, गैर जरूरी बात करता है, तो हजरत फरमाते हैं खतरा है मुझे ऐसे इंसान के बारे में कि कहीं उसका खात्मा ईमान पर ना हो, अल्लाह ताला उसे बुरी मौत न दे। हजरत फरमाते हैं मुझे डर लगता है। और मुझे और मसला छोटी सी बात है याद आई, फिर मैं इसके बाद अपील भी करता हूँ, मुझे तो अपील के लिए खड़ा किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक दो बात जबान पे आई है, आप लोगों को फायदा हो जाए, तो उस फायदे की गरज से मेरे जहन में आ गई, मैं सुनाता हूँ। एक हदीस शरीफ है, शायद आप लोगों में से बहुत सारे आप ने सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी तो मैं आज सुना देता हूँ। वो ये है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फजर की सुन्नतें घर से पढ़कर आए, फजर की सुन्नतें अजान सुनी और घर में टाइम हो गया, घर से फजर में दो सुन्नतें पढ़े और मस्जिद में आकर जमात के साथ फजर की नमाज पढ़े, तो अल्लाह सुबहानहू व तआला उस शख्स को तीन इनाम से नवाजते, तीन इनाम। तहज्जुद वगैरह तो आपने घर में पढ़नी है, इसलिए कि ये तो इंफिरादी नमाज होती है, बेहतर यह है कि तन्हाई में पढ़े आप लोग। तो तहज्जुद वगैरह घर में पढ़ी, जैसे ही नमाज का वक्त हो गया, अजान का वक्त दाखिल हो गया, अजान हो गई, तो आप अपने घर में जो है दो सुन्नतें पढ़ लें और फर्ज नमाज मस्जिद में आके पढ़े। दो फायदे होंगे, तीन पे इनाम वो मिलेगा, वो मिलेगा, पर एक जो सबसे बड़ा फायदा होगा जो इस हदीस पाक में नहीं है लेकिन जो आपको इनाम मिलेगा वो मैं बताता हूं कि घर से जब आप मस्जिद को आएंगे, घर में सुन्नतें पड़ी होंगी, तो घर में तो वजू के साथ सुन्नतें पड़ेंगे नहीं, तो रास्ते में आएंगे तो आपको बावजू अल्लाह के घर में आने का सवाब मिलेगा, और ये सवाब अलग है, घर से बावजूद मस्जिद में आने का सवाब अलग है। तो घर से आप सुन्नतें पढ़ के आए, मस्जिद में आकर जमात के साथ नमाज पढ़े, तो फरमाया मेरे आका ने अल्लाह ताला उसको तीन इनाम से नवाजते हैं। एक इनाम ये होता है कि अल्लाह सुभान व तआला इस अमल की बरकत से उसकी रोजी में बरकत अता करता है। करके देखें, मैं मस्जिद में खड़ा हूं, रोजी इस कदर तंग थी उस शख्स की, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। कभी अपने बच्चों के लिए दूध लाने के पैसे नहीं होते थे उस शख्स के पास, इतनी रोजी तंग थी उसकी। और उसको ये अमल बताया गया, आज आलम यह है अल्लाह सुभान व तआला के फज़ल और करम से कि उसके पास तीन तीन गाड़ियां हैं, घर के हर पद के पास गाड़ियां हैं। अल्लाह ने रोजी में ये बंद कर दी, और हलाल की रोजी है, हराम की रोजी नहीं, हलाल की रोजी। और हलाल की रोजी का आलम यह है, वो किसी बुजुर्ग के पास एक शख्स आया, उसने कहा हजरत ये 10,000 है, आप जो है खर्च कर दें किसी गरीब में, किसी मिस्कीन में। तो बुजुर्ग ने एक बड़ी अजीब बात फरमाई, कहा पहले हलाल माल तलाश करो, फिर उसका मसरफ तलाश करो। पहले माल आमदनी हलाल तलाश करो, फिर उसका मसरफ तलाश करो। वो समझा नहीं, उसने कहा हजरत ये 10 है गरीबों को दे दे। कहा हाँ, पहले हलाल का मसरफ तलाश करो, हलाल तरीके से माल को हासिल करो, फिर खर्च करो। हलाल मसरफ फिर खर्च, सही मसरफ खर्च करना, तलाश कर लेना। वो समझा नहीं, उन्होंने कहा हजरत प्लीज ले रहे हैं, हजरत ने कहा अपने हाथों से खर्च कर दो। वो चला गया, चला जाने के बाद रास्ते में एक अंधा मिला, तो उसने बहुत दिल उसका खट्टा हो गया था, और इतना रो रो कर वो अंधा मांग रहा था। तो उन्होंने कहा कि हजरत ने 10,000 मेरे रिजेक्ट कर दिए है, मैं इस अंधे को दे देता हूं। उसने अंधे को 10,000 दे दी। और फिर उसके बाद एक दिन के बाद वो निकला उस अंधे को देखने के लिए कि देखो कि उस शख्स ने मेरे 10,000 से क्या किया। तो जब उसी जगह पे जब पहुंचा तो देखो वो अंधा बैठा हुआ है और अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा, और उसकी आंखें हैं। वो अंधा नहीं था, उसकी आंखें थी, और वो अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था, खा पी रहा था, हंस रहा था, और कह रहा था लोगों देखो कितने इंसान बेवकूफ है कि जरा आंख बंद कर दी, अंधा समझ लिया, और मुझे 10,000 देकर चले गए। अब वो इतना उसको तकलीफ हुई, वो हजरत के पास गया, हजरत से जाकर सारा मंजर बयान किया, और कहा तो कहा मैंने पहले तुम्हें कहा था कि हलाल तरीके से पहले कमाना सीखो, फिर हलाल मशरब भी तुम्हें मिल जाएगा। और यूं कहकर कहा देखना चाहते हो, कहा ये देखो। कहा ये कहकर हजरत ने अपने जेब से 2 पौंड उस जमाने के 2 दिरहम निकाले और कहा पहला जो आदमी तुम्हें मिलेगा उसको दे देना, पहला जो आदमी तुम्हें नजर आएगा। चुनांचे वो गया तो रास्ते में एक शख्स आ रहे थे, बिल्कुल सफेद कपड़ा पहने हुए थे, शख्स तो सूरज से नजर ही नहीं आते थे कि ये कोई गरीब है, पर हजरत की हिदायत थी पहला जो मिले उसे 2 दे देना। उसने उस आदमी के हाथ में 2 दे दिए, और 2 देने के बाद जब वो आदमी आगे निकल गया शुक्रिया अदा करता हुआ, बड़े एहतराम से उसने 2 ले लिए, और आगे उसने पीछे मुड़कर देखा तो अंदर से कोई चीज निकाल रहा था अपने गरीबान के अंदर से, खड़ा है एक जगह, उसने देखा उधर खड़ा है, वो अंदर कुछ निकाला, और निकालने के बाद यूं फेंक दिया और आगे चला गया। तो ये पीछे मुड़ के आया, देखा क्या इसने निकाला और क्या फेंका, तो देखा कि मुर्गी थी और मरी हुई मुर्गी थी, वो उसने निकालकर फेंक दी। ये उसके पीछे भागा, उसने कहा ठहर जाओ, धोखाबाज, देखने को कितना अच्छा लगता है और मरी हुई मुर्गी तेरे पास है। उसने कहा भाई तू मुझे रॉन्ग समझा है, मेरे घर में फाका है, 3 दिन से हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, भूख से मर रहे हैं। तो 3 दिन के बाद मसला यह है, मुफ्तियों से पूछा, उन्होंने कहा तुम्हारे लिए मुर्दा खाना जायज है, बाजार से गुजर रहा था तो मुझे मुर्दा मुर्गी पड़ी हुई मिली, मैंने उठा ली अपने बच्चों के लिए, और जब तुमने मुझे 2 दे दिए, ये 2 दिरहम, तो अब मेरे लिए इस मुर्गी का खाना जायज नहीं है, लिहाजा मैंने मुर्गी उठाकर फेंक दी, अब इस 2 पैसे से ले जाऊंगा और ले जाकर खाना खरीदूंगा, और खरीदने के बाद मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा। पूछा कितने आदमी है, कहा हम घर के 15 आदमी है। वो बुजुर्ग से जाकर सारी बात कही, कहा तुमने देखा कि 2 दिरहम के साथ जो हलाल तरीके से कमाया था अल्लाह ने उसको लगवाया कहाँ है। कहा उस जगह पे लगवाया जिससे 15 आदमियों का पेट भर रहा है, जो हराम खा रहे थे हराम से अल्लाह ने बचा दिया, और उनको 15 आदमियों को अल्लाह ने 2 दिरहम के नतीजे में हलाल की रोजी अदा की। तो एक ये कि अल्लाह रोजी में बरकत अता कर देंगे। फजर की सुन्नतें पढ़ के आएंगे, मैं हदीस पाक सुना रहा हूँ, फजर की सुन्नतें घर से पढ़ के आए, फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़े, तो फरमाया अल्लाह सुबहानहू व तआला एक तो उसकी रोजी में बेहिसाब बरकत अता फरमाए, और दूसरी बात फरमाया मेरे आका अलैहि सलाम ने कि इस दो रकात घर में पढ़कर आना और दो मस्जिद में आने की बरकत से अल्लाह उसके घरों के अगर झगड़े हैं मियां बीवी के बच्चों के, अल्लाह पाक इसकी बरकत से झगड़े खत्म कर दे। किस घर में ऐसे है जो झगड़े नहीं होते, हर घर में छोटे मोटे झगड़े हैं। फरमाया ये अमल करके देखो अल्लाह सुबहानहु व तआला घरों के झगड़े खत्म कर देंगे। और तीसरी बात भी इरशाद फरमाई मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, इस अमल की बरकत से अल्लाह सुबहानहु व तआला उस आदमी का खात्मा ईमान पे फरमाएंगे। वो आदमी जब भी वफ़ात होगा तो अल्लाह सुबहानहु व तआला इस अमल की बरकत से उसे ईमान पे खात्मा फरमाएंगे। दोस्तों ये हदीस बात मैंने सुनाई तो ये बात इसके जिम्मे आई थी कि जो भी बात आप सुने दीन की अजमत और एहतराम के साथ सुने, और कोशिश करें कि अल्लाह के दीन की बातों के सुनने के लिए जो उसका अदब है जो उसका एहतराम है जिस तरह उसको कदर के साथ सुननी चाहिए उसी कदर और एहतराम के साथ सुने। अल्लाह ताला आप तमाम हजरात का यह आज का कबूल होना जमा होना कबूल और मकबूल फरमाए, और अल्लाह अपनी रहमत से अपने फजल करम से अपनी मेहरबानी से आज जो प्रोग्राम पेश किया गया सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के हवाले से और उम्मा जो है वेलफेयर वालों ने जो प्रोग्राम आपके सामने पेश किया और अपनी तमाम रुईदाद आपके सामने सुनाई है और इस पर आपने जो प्लेज दी है अल्लाह सुबहानहू व तआला अपनी रहमत से आपके देने को कबूल फरमाए। दोस्तों यानी ये खुद भी मौलाना से बात हो रही थी, हर दो अकाबिरीन से बिलखसूस मौलाना मोहम्मद साहब और मौलाना इदरीस साहब बैठे हुए थे, हम काफी देर तक बाहर हम उनसे बात कर रहे थे, वो भी कह रहे थे कि हमें इतना नहीं था कि इतने बड़ा मजमा जमा हो जाएगा और इस मजमे से इतने बड़े प्लेजेस आएंगे, लेकिन अल्लाह सुबहानहू व तआला वो अल्लाह जिसे मैंने कहा था ना कि भाई पहले हलाल तरीके से कमाना सीखें फिर हलाल मशरफ भी अल्लाह देगा, तो आप लोगों में से अक्सर वो है अक्सरियत बल्कि सब वो है कि जिन्होंने हलाल तरीके से कमाना सीखा है और अल्लाह सुबहानहू व तआला ने आपको मशरफ भी हलाल का अता फरमा दिया है। 100 मकान की इन्होंने आप हजरात के सामने रखी थी पेशकश रखी थी ऑफर रखी हुई थी, मुझे एक खत मिल रहा है इसमें उन्होंने कहा कि 86 हो चुके हैं सिर्फ 14 बाकी है और इसी 14 के लिए मुझे खड़ा किया है। मुझे उन्होंने लिखा है इसमें कि आप जब खड़े हो रहे थे तो शुरू में बता रहे थे कि खड़े हुए थे तो 16 या 18 बाकी थे, अब 14 हो गए, 5-10 मिनट और खड़े रहे ताकि ये 14 भी पूरे हो जाए। तो मेरा ख्याल है आप मुझे बैठना चाहिए कम इसलिए कि मैं बैठू ये 14 भी पूरे करें, क्या ख्याल है 100 हो जाए ताकि जब ये आवाज बाहर जाएगी बर्मिंगम में नया इंशाल्लाह अगला इज्तिमा उम्मा वेलफेयर वालों का बर्मिंगम में मुनक्किद हुआ है, तो बर्मिंगम में जब ये खबर पहुंचेगी इंशाअल्लाह ताला कि रोशदेल से जो मकानात की तामीर में साथियों ने हिस्सा लिया है वो 100 हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह वो लोग भी 100 की नीयत से वहां जमा होंगे, और यकीन कीजिए कि वहां जो 100 लोग जमा होंगे और वो इस नीयत के साथ देंगे कि वहां ऐसा हुआ था तो वहां वालों के सवाब में भी इंशाअल्लाह ताला आप भी शरीक होंगे। जैसा आपने इंफाक की सबीलिल्लाह और सदका की गरज से और उसके फायदे और उसकी अहमियत और उसके फजाइल उलमाए किराम से और नए उलमाए किराम से और गर्म जोश और शोला बयान करने वालों से आपने सुना है, अब मजीद में इस सिलसिले में ज्यादा कुछ नहीं अर्ज करूंगा। उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह सुमे इंशाअल्लाह ताला ये 14 मकान जो बाकी हैं इंशाअल्लाह आज के दिन ये घर जाने से पहले पहले 14 मकान भी इंशाअल्लाह ताला यहीं से पूरे हो जाएंगे। अगर आप हजरात ने लिखवा दिए हैं तो अल्लाह ताला आपको मुबारक फरमाए, और अगर आप हजरात ने नहीं लिखवाए हैं तो दिल दिल में इरादे करें अल्लाह से मांगें कि अल्लाह ताला हलाल की रोजी आपने अगर दिलवा दी है तो अल्लाह इसका हलाल का मशरफ भी हमारे सामने है, अल्लाह हमें हलाल के मशरफ में हमसे खर्च भी करवा दे। क्या वईद है कि अल्लाह सुबहानहू व तआला अपनी रहमत से आपके लिए इस घर का कबूल फरमा ले, आपको कबूल फरमा ले आपको इस घर के लिए, और जब तक इसमें रहने वाले रहेंगे। वैसे हम कितना खर्च कर देते हैं, मैं अपने एक दोस्त की बात सुनाऊं, पिछले दिनों की बात है कि उन्होंने शादी की अपनी बच्ची की, एक ही बच्ची थी, तो उन्होंने शादी में 1 लाख पौंड सिर्फ खाने पीने पर और हॉल पर और गाड़ियों पर खर्च कर दिए। मैं शादी में गया हुआ था, उनकी शादी में मैं खुद शरीक था, तो मैंने उनसे इतना सब कुछ शामिल शौकत देखकर मैंने उनसे कहा, मियां इतना सारा खर्च कर दिया, इतना जबरदस्त हॉल, इतनी जबरदस्त गाड़ियां, इतने जबरदस्त डेकोरेशन और गेटअप और सेटअप, इतना जबरदस्त कितना खर्च हुआ? उन्होंने कहा 1 लाख पौंड। मैंने कहा 1 लाख पौंड आपने खर्च कर दिए? उन्होंने कहा हाँ, मोरे साहब बेटी भी तो आकर एक है, तो एक बेटी मेरा कौन है पीछे, ना कोई लड़का है ना कोई रिश्तेदार है, एक बेटी तो है, मैंने खर्च कर दिया तो ज्यादा नहीं किया। मैंने उस वक्त एक छोटी सी बात उनको कही, मैंने कहा तुमने गलत समझा, एक ही बेटी है तुम्हारी? कहा हाँ। मैंने कहा नहीं, तुम्हारी तो बहुत सारी बेटियां हैं। वो समझा नहीं। कहने लगा खुदा की कसम है जरूरी मैं पाकिस्तान से आया कदे जिना किता ही नहीं, कदे तो जिना किता ही नहीं, किसी गोरी को हाथ लाया ही नहीं, कि तू कुड़ियां आ गई। मैं आखे बंदा फंस गया है, मैं आख्या ना तेरी है। अब यकीन करे अल्लाह के घर में हूं, उस शादी उसकी बेटी की हो रही, पसीने उसको शुरू हो गए, रकम साहब के दे खाब इंच तो नहीं होया। मैं क्या मुझे नहीं मालूम, पर है तेरी बेटियां। कह लगे अच्छा तुम किस दसिया? किसे मेरे दुश्मन ने दसिया? मैं आखिर किसी दुश्मन ने नहीं, ये मुझे पता है। मैंने कहा किसी को पता नहीं, मैं कहा तेनू पता है? कहने नहीं। मैं कहा तुझे नहीं पता तो तेरे दोस्तों को क्या पता होगा, मुझे पता है। कहने का मोहन साहब दसो। मैं आख्या फिर बाद में बताता हूं। वो जाए ना, निकाह हो गया, निकाह के बाद तू मेरे आगे पीछे। मैं आख्या जाओ मिलो, लिफाफे जमा करो, लो जाओ ना। वो आगे पीछे मुझे कहने लगा कौन सी मेरी बेटी? मैंने कहा खा पीने के बाद, मैंने कहा मुझे धक्के देकर निकाल ही देगा, पहले खा ले रहे दो। खा पी लिया चंगा भला। फिर मैंने उसे कहा ये यतीम बेटियां उम्मत की हैं, वो किसकी बेटियां हैं? जो यतीम की बच्ची जिनका बाप कोई नहीं, वो किसकी बच्चियां हैं? जिनके बाप इस दुनिया से जा चुके, कितने यतीम बच्चे हैं, कितने यतीम बेवाएं पीछे रह गई, कितने हमारे भाई रह गए, कितनी ऐसी औरतें थी जो शौहर से मारी। मैं कहा वो किसकी बेटियां हैं? वो तुम्हारी नहीं, अगर तुमने उनके सर पर हाथ नहीं रखना। अल्लाह के घर में खड़ा हूं। अभी कल परसों हमारी मस्जिद में यही प्रोग्राम चल रहा था, तो मैंने अपनी मस्जिद के एक दर्श में ये बात कही थी। मैं पूरे दयानतदारी के साथ कह रहा हूं कि हजरात साहबे किराम के वाक्य आप सुना रहा हूं कि बेशुमार हजरात साहबे किराम रिज़वानुल्लाह के घर में काफिरों के बच्चे पला करते थे। काफिरों के बच्चे जिनके बाप काफर है, जिनकी मां काफर है, काफिरों के यतीम बच्चे हजरात साहबे किराम के घर में पला करते थे, और वो उनकी लुक आफ्टर करते थे, वो उनका ख्याल रखते थे। एक वो जमाना था कि मुसलमान काफिरों के बच्चों की रखवाली करता था, और आज मुसलमान मुसलमान के बच्चों की रखवाली नहीं करता। मैंने कहा वो तुम्हारी बच्चियां नहीं, या तुम क्या दो तुम्हारी बच्चियां नहीं? इतना मैंने कहा, मुलाकात की आ गया। मुझे अफसोस हुआ, सुनिए बात, मैं मौलवी की बात कर रहा हूं, मुझे अफसोस हुआ कि उन्होंने मुझे निकाह के पैसे नहीं दिए। इसका मतलब तुसी दो ये भी मैं नहीं कहता हूं, मैं आपसे भी नहीं मांग रहा हूं कि भाई कैसा आदमी है कि भाई हमसे मांग रहा, उसने नहीं दिया, इसलिए कि मैं निकाह के पैसे लेने को जायज ही नहीं समझता। निकाह के पैसा लेना मैं जायज नहीं समझता, इसलिए कि निकाह तो इबादत है, और इबादत के क्या पैसे लेने? नमाज के कोई पैसे देते हैं आदमी? अजान का कोई पैसा लेता है? निकाह एक इबादत है, तकरीर एक इबादत है, उसके पैसे नहीं हुआ करते, तो मुझे कोई दुख नहीं हुआ। पर उन्होंने दिया भी कोई नहीं, किस वजह से नहीं दिया ये मैं बात में आपको सुनाऊंगा। नहीं दिया उन्होंने, मैं आ गया, कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ा मुझे, लेता ही नहीं मैं। जब आ गया तो वो आए वापस, 2-3 महीने के बाद वो साहब आए और उनके मेरे पास आए, मुलाकात की, लिफाफा मेरे सामने रखा, मेरे सामने लिफाफा रख के कहते हैं मोल साहब ये पैसे। मैंने कहा नहीं भाई मैं तो लेता ही नहीं, मैं नहीं लेता। उन्होंने कहा नहीं मोल साहब। मैंने कहा नहीं, आपके लिए नहीं है, मैंने कहा फिर किसके लिए है? मैंने कहा मेरी बेटियों के लिए, मेरी बेटियों के। मैंने कहा कौन सी बेटी के लिए? एक तो एक ही बेटी है। मैंने कहा नहीं नहीं उस दिन आपने याद दिलाया ना, मेरी बेटियों के लिए है। इसके अंदर मैं 20,000 बॉन्ड लाया हूं, आप उससे 8-10 बच्चियों की शादी करा दें। मेरी बच्ची 20,000 बॉन्ड को लेकर आए और उन्होंने कहा कि ये 20,000 बॉन्ड है मेरी वो बच्चियां है, आप इन बच्चियों के शादियों पर इतना खर्च कर दें। और साथ ये जुमला कहा मजीद जरूरत होगी तो मैं 1 call अवे फ्रॉम यू, मुझे फोन कर देना, मजीद पैसे भी मैं आपको ले जाऊंगा। आंख खुल गई शख्स और अल्लाह के घर में जो इससे एक बड़ी बात है वो मैं कह रहा हूं, उसने कहा मुझे अपनी बच्ची की शादी पर खर्च करके इतनी खुशी नहीं हुई, उसमें तकलीफ हुई थी, तो मेरे बड़े पैसे जा रहे थे। उसने जुमला कहा, उसने कहा जब मैंने अपनी बच्ची की शादी की थी बड़े धूमधाम से बड़े पैसे खर्च किए, तो उस वक्त कभी मुझे तकलीफ भी हुई थी कि इतने पैसे, कहा आज इन बच्चियों के पैसों पर खर्च करके मुझे खुशी महसूस। मेरे दोस्त चलो जी कहते हैं 5 मिनट और खड़े रहो, सिर्फ 9 रह गए, सिर्फ 9 रह गए, एक और कम कर दे तो कहते 8 रह गए, 8। अल्लाह भाई ये आपके भाई हैं, आपकी बहने हैं, आपके बच्चे हैं, थोड़ा सा थोड़ा अंदाजा लगा लीजिए, हमारा बच्चा अगर उसे बुखार हो जाए, वो सर्दी में ठिठर रहा हो, हमें कितनी तकलीफ होती है। और हमने ये देखा छोटे छोटे मासूम बच्चे, बूढ़े बिल्कुल छप्पर फटा हुआ है, खेमा फटा हुआ है, बास तो ऐसे हैं जिनके कई कई दिन गुजर गए हैं, कई कई रातें गुजर गई हैं, बेचारों को पेट भरकर खाने को नसीब नहीं हुआ। अल्लाह सुभान व तआला इन नौजवानों को, इन उलमाए किराम को जज़ाए खैर अता फरमाए। और पता नहीं आपको उम्मा वेलफेयर के बारे में पता है कि नहीं, जब ये शुरू में जब इसकी बुनियाद रखी जाने वाली थी, चंद उलमाए किराम बैठे हुए थे और बैठने के बाद सोच रहे थे कि आया हमने ये काम करना है तो आए ये काम कर सकेंगे, करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो जो लोग शुरू में इसके बानी मबानियों में से थे तो वो नकल करते हैं कि उन दिनों उन्हें बशारत हुई थी और बशारत में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई थी, गोया अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम की तरफ से एक तरह की तायीद थी कि काम उठाना तुम्हारा काम होगा और इस काम के पीछे तवज्जो और दुआएं करना मेरा काम होगा। और वो दुनिया ने फिर देखा और दुनिया देख रही है कि चंद उलमाए किराम, चंद नौजवान उठे हैं, चंद आलिम दीन उठे हैं और अल्लाह सुभानहू व तआला ने इस काम को इस कदर अपने पाक बारगाह में मकबूलियत और तरक्की से नवाजा है कि देखते देखते अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इंग्लैंड में नहीं पूरी दुनिया में ये जबरदस्त तंजीम बन गई। मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, अल्लाह के घर में खड़ा हूँ, इतना मैं इम्प्रेस हुआ, इतना इम्प्रेस हुआ इनके यहाँ वो नौशेरा में गालिबन जो चिल्ड्रन अकेडमी है यतीम बच्चों के लिए, अल्लाह अकबर कबीरा, चंद सालों में जो तरक्की की है, वहां कई कई सालों से जो मदरसे कायम है उन मदरसों में वो बात नहीं देखी जो चंद सालों में इस मदारिस में मैंने बात देखी। एक एक पैसा मैंने उधर जाके कहा था, मैंने कहा मैं जाके जितनी मस्जिदों में हो सकेगा मैं हर मस्जिदों में ये बात करूंगा कि एक एक पैसा जो आप लोगों ने दिया है वो सही जगह पर लगा है और वर्थ है। और यही बात मैं सिर्फ आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह सुभान व तआला को हाजिर नाजिर समझ के कहता हूं कि इंशाअल्लाह आप जो जो रकम देंगे अल्लाह की जात से 100% उम्मीद रखें कि इंशाअल्लाह तआला आपकी रकम सही कामों में और सही मसरफ में और जरूरतमंदों में और मोहताजों में ही इंशाअल्लाह तकसीम की जाएगी। भाई आप हजरात से गुजारिश है सिर्फ 5 बाकी, कहते 5 बाकी, अब ये 5 मैं अपने जिम्मे ले लूं, प्लीज ऐसे मेरे ऊपर जुल्म न करो। उस दिन भी निकाह के पैसे नहीं मिले थे, तो याद रखेगा मैंने बोलिए तो छकना नहीं है वो तो याद रखेंगे। तो वो निकाह मैंने कहा उत्तर तो खुल ली ना, उसने कहा मौल साहब अब कौन सा मेरा निकाह करना है जिसमें आपको बुलाना है। मैंने कहा तेरे पोते होने तक मैं जिंदा रहूंगा, कह दिया मैं तेरे पोते के निकाह में वसूल करूंगा। तो नवासा हुआ, पोता तो है ही नहीं, वो तो मैंने उसको ऐसे ही मारा था। हाँ आप लोग भी ऐसे ना समझे, अब खुश हो रहे देखो मौलवी साहब, मैंने कहा पोता बोला था, पोते का कौन निकला रहता है, उसके तो पोते होने ही नहीं, उसका तो नवासा हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, बेटी थी ना उसकी, तो बेटा तो नहीं था। बहरहाल ये चार पांच मकान बाकी, अल्लाह सुभान व तआला आपका जमा होना कबूल फरमाए, अल्लाह आपका ये अर्जिया कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी इस आमद को कबूल फरमाए। वाकई आप आए और आने के बाद इस जलसे को आपने रौनक बख्शी और कामयाब बनाया। अल्लाह ताला उम्मा के लिए दुआ करे, अपनी दुआओं में, निजी दुआओं में भी इस उम्मा वेलफेयर के लिए आप लोग दुआ करें कि जहां कहीं ये काम कर रहे हैं, जैसा काम कर रहे हैं, अल्लाह इनके कामों में बरकत अता फरमाए, मजीद तरक्की अल्लाह अता फरमाए। अभी इन्होंने दुनिया में बहुत जगह जाना है, अभी बहुत बड़े काम करने हैं, अगर हमने इनका साथ दिया हमारी दुआओं के जरिया से, दामे दिल में कदम सुखने हमारे मशवरों से, हमारी सलाहियतों से और हमारी रकम से, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि ये पूरी दुनिया के मोहताजों तक और जरूरतमंदों तक पहुंचेंगे और इंशाअल्लाह हमको घर में बैठा कर पूरी दुनिया के लोगों का अल्लाह पाक के यहाँ से सवाब दिलवाएंगे। हैरान होंगे कभी कि कभी पाकिस्तान से और कभी अफ्रीका से और कभी नजेर से और कभी सोमालिया से और कभी पता नहीं, अभी हमारे आप मौलाना जाकिर साहब को देखें तो आपको उनको देख कर ही आप पूछेंगे कि कमो साहब कैसे बीमार हुआ, क्यों बीमार है, लेकिन वो मौलाना साहब जो बाजार जिस्म के एतबार से इतने कमजोर लगते हैं लेकिन ईमान के एतबार से, अपने रूहानी कुवत और ताकत के एतबार से इतने मजबूत है कि उस इलाके में जाकर आए हैं कि जिसका सिर्फ मैं सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वहां जाकर ये महीना डेढ़ महीना वहां रहकर उमा वेलफेयर की तरफ से जाकर खिदमत करके आए, तो आपकी रकम कहां कहां जाकर ये लोग खर्च कर रहे हैं और कयामत के दिन आप अल्लाह के सामने खड़े होंगे और दुनिया के मुतअद्दद ममालिक से आप लोगों के लिए ईसार सवाब और सबका जारिया की शक्ल में इंशाअल्लाह सवाब आता रहेगा। अल्लाह की जात से उम्मीद करता हूँ, इस दुआ के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि पांच घर है वो मेरे मन से न रहे, वो अल्लाह करे उतर जाए, और अगर मैं ये ऐलान कर ही देता हूँ कि अगर ये पांच घर यहाँ से पूरे न हुए तो बरी वाले ये पांच देकर सौ का सवाब ले लेंगे, ये सुन ले, ये तो आज सौ लेकर घर जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर इधर से हो गए तो सारा सवाब रोजेल वालों का, और अगर नहीं तो पांच देकर थोड़ा ऊपर डालकर अंदर का सब हम ले लेंगे इंशाअल्लाह। सुना देता हूँ एक बात, दिन को काम करके आए, सुन लीजिए, पांच मिनट और लेता हूँ आप, दिन को काम करके आए, इतना कमा लिया, चार पूरे हो जाएंगे इंशाअल्लाह, पांच मिनट में ले लिया इंशाअल्लाह, ले लेंगे इंशाअल्लाह। दिन को कमा के आए, इतना पैसा ले आए कि जिससे घर वालों का पेट आज भर जाएगा, इतनी मजदूरी थी, दिहाड़ी मजदूरी, पास लोग होते हैं हलाल की रोजी कमाने वाले। हजरत मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब कांगलवी रहमतुल्लाह अलैह एक मस्जिद में गए, रात रहना था, सुबह आगे जाना था, किसी ने मेहमान देखा तो कहा हजरत कहाँ, सलाम अलैकुम, मुसाफिर हो, कहा मुसाफिर हो, खाना खा लिया, कहा अल्लाह खिला देगा, खा लेंगे, नहीं तो कोई ऐसा फर्ज नहीं, उसने कहा मैं भी आता हूँ, घर गए, घर जाकर तीन रोटी ले आए, कहा हजरत ये तीन रोटी खा ली, अल्लाह का शुक्र अदा किया, सारा दिन मस्जिद में बैठे, शाम को फिर वो आदमी आया, कहा हजरत आपने कहा सुबह चला जाऊंगा, कहा हाँ नहीं जा सका आज, कहा खा लिया, अल्लाह खिला देगा कल की तरह, तो कहा ठहरे, वो घर गया, आज दो रोटी ले आए, सुनिए, घर गया दो रोटी ले आए, दो रोटी खा ली, अल्लाह का शुक्र अदा किया, सारा दिन वहीं बैठे रहे। तो कल वो आया, उसने देखा इधर ईशा की नमाज में आज भी बैठे हुए, तो कहा आपने तो कहा था चला जाऊंगा, कहा आज नहीं चला जाऊंगा, वो घर गया, आज एक रोटी लाया और कहा मौलाना सुबह चले जाना, सुबह चले जाना, अब नहीं रहना इधर। मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब कहने लगे क्यों बाबा, क्यों चला जाओ क्यों? उसने कहा मैं एक हूं, मैं एक बीवी है, एक बच्चा है, काम करता हूं, इतना खाना मिलता है कि हम तीन रोटी घर के अपराध खा लेते हैं, पहले दिन मेहमान समझ कर तीनों की रोटी मैं ले आया, तीनों भूखे रहे, दूसरे दिन बच्चे का भूख नहीं देखा गया, बच्चे को उसकी रोटी दे दी, हम मियां बीवी के लिए आए, पर आज बीवी की भूख भी नहीं देखी गई, उन दोनों को देखकर खुद भूखा रहकर आ गया हूं। 3 दिन भूखा रह सकता हूं, 4th दिन को अनु खा जाऊंगा, आप में नहीं रहना, वरना आपकी हेल्प नहीं, तुम्हें खा जाऊंगा। अगर सुनाते आप तू सुन, मैं क्यों रहा, मैं कोई थे वेला नहीं, फुर्सत में नहीं हूं, बाकी मैंने पहले दिन कहा था जाना है, रात रहनी थी, पर मैं क्यों रह गया, ये भी सुन ले। मैं सुना दे, मैं जब तेरी रोटी खाई ना, खा के सोया हूं, तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ उस रात जनाब रसूलुल्लाह की ज़ियारत नसीब हुई तेरी रोटी की बरकत से। मैंने कहा इतना आदमी अच्छा है, इसकी रोटी की बरकत से मुझे ज़ियारत हो गई, मैं तो कल फिर इसकी रोटी खाऊंगा। तो दूसरे दिन फिर खाई है, तो दूसरे दिन फिर अल्लाह के पैगम्बर इस्लाम की ज़ियारत नसीब हुई। तो मैं यहाँ ठहरा हूँ रोटी की वजह से नहीं, उस ज़ियारत की लालच में कि तेरी रोटी की बरकत से अल्लाह मुझे नसीब कर। तो दिहाड़ी वाले भी लोग होते ऐसे, वो दिहाड़ी काम करके आए, जो कुछ कमाया घर में गए, बच्चों को दिया, खुद खा लिया। मस्जिद में जाते हैं तो ऐलान होता है कि अल्लाह के पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं चंदा दो, गज़वाए तबूक में जाना है। सब लोग ला रहे हैं इनके पास कुछ भी नहीं, गालिबन अबू अकील उनका नाम है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कुछ भी नहीं। अब बड़े हैरान और परेशान के मेरे आका ने चंदा मांगा है, ऐलान उमूमी हुआ है, और मैं कुछ नहीं दे सकता। मेरा आप जैसे होते तो कहते नहीं है तो क्या करिए, नहीं है तो नहीं दे सकते। लेकिन उनका सोचिए, वो कहते हैं हमने देना है, अल्लाह के पैगंबर इस्लाम ने मांगा है, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जरूर देना है। अब वो सोच रहे हैं, सोचने पर अल्लाह ताला मदद भी फरमाते हैं, अल्लाह की तरफ से दिल में आया कि ऐसा करो, आज रात किसी की मजदूरी कर लो। एक यहूदी के दरवाजे पर गए, देखा कि वो खुद पानी भर रहा, उन्होंने कहा तू पानी भर रहा बॉस होकर, उन्होंने कहा क्या करें, उन्होंने कहा मैं भर दूं तो, उन्होंने कहा एक ऊंट खजूर मिलेगी, सारे मेरे बाप को सैराब कर दो। उन्होंने कहा ठीक है। सारे रात 2-3 बजे तक उनके बाप में पानी डालते रहे, और जब पानी डालकर सैराब कर दिया, सब दरख्तों को और जो है खेतों को पानी डाल दिया, उसने अपने वादे के मुताबिक एक मुट्ठी खजूर दी। अब वो एक मुट्ठी खजूर हाथ में लेकर छुपा कर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फजर में हाजिर हुए, और ये छुपा रहे हैं कि बहुत थोड़ा लाया हूँ, अल्लाह के पैगम्बर सलाम की झोली में जाकर चुपके से डाल दिया। हजरत जी हजरत रियाज साहब रहमतुल्लाह ने हयात सहाबा में वाकया लिखा है जिल्द 2 में, हजरत फरमाते हैं कि उस सहाबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में चुप करके ये एक मुट खजूर की दे दी। अल्लाह के पैगम्बर सलाम ने वो मुट खजूर की दी, और लेने के बाद जहां टेला सा बना हुआ था, पूरी टेरी बनी हुई थी, वो गज़वाए तबूक के लिए जो माल आया था, वो माल के पास अल्लाह के पैगंबर इस्लाम तशरीफ ले जाते हैं, हाथ में वो खजूर है थोड़ी एक मुट, अल्लाह के पैगंबर इधर कुछ रख रहे हैं, मेरे आका उधर कुछ रख रहे हैं, मेरे आका कुछ इधर, और उस छोटी सी एक मुट खजूर को सारी टेरी पर बिखेर दिया। और अगला जुमला सुनिए, मेरे आका ने फरमाया मेरे इस खजूर के बखेरने का मकसद यह है कि इसके नीचे का सारा माल अल्लाह इन खजूर की बरकत से कबूल करना है। खजूर एक ऊंट है, लेकिन फरमाया इसके अंदर इतने इखलास है कि अल्लाह सुभानहु व तआला की रात से उम्मीद है कि अल्लाह इस खजूर की बरकत से नीचे वालों का सब का कबूल करना है। तो 95 तो हो गए, हाँ रह गए, मेरे मत्थे बुआबू है, इन्हें छोड़ना नहीं है मुझे, कहते हैं 4 रह गए हैं, मैं खुश हो रहा हूँ, थोड़ा मेरी खुशी में इजाफा कर दे, 4 और खड़े हो जाए भाई मेरे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाह
ऐसे लिखा रहे हैं मुझे खुश करने के लिए लिखा
रहे जजाकुमुल्लाह समझ में जी। फॉर्म चाहिए सर, आज जिनको फॉर्म चाहिए वो जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बस 4 मकान है, देखिए अब दुआ कर लेते हैं, आपको ज्यादा देना तो नहीं है तकलीफ, 4-4 ही सही इंशाअल्लाह ताला, हमने तो सवाब ले ही जाना है, अल्लाह सुभान व तआला फिर दुआ है अल्लाह आप सबके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह सुभान व तआला आपकी रोजी रोजगार में बेइंतहा बरकत अता फरमाए। और ये वन ऑफ तो है नहीं कि आज पहली दफा हम आए हैं, आइंदा नहीं आएंगे, बार बार आपके पास आना है, और बार बार आपके आकर आपके प्लेजेस को हमने लेना है आपसे। और एक बात मैं देने वालों से कहूंगा कि ये न समझिएगा कि हमने देकर इन पर एहसान किया है, बल्कि आप इनका शुक्रिया अदा कीजिए कि हमारे दरवाजे पर आकर हमसे ये ले गए हैं ताकि वो सही जगह पर खर्च कर सकेंगे। इसलिए कि आज अगर वो जमाना आ गया है, मैं अपनी तरफ से बात करूं कि वो जमाना आ गया है कि अगर हम ढूंढने के लिए निकले ना तो कई दूरियां तोड़ने के बाद कोई सही मोहताज मिला करता है, और हमें जाना पड़ेगा देने के लिए। कि अल्लाह का शुक्र है कि वो खुद आए हमारे दर पर और हमें मौका दिया कि हम उनको देकर अपनी जिम्मेदारी से संतोष हो जाए। अल्लाह इनका आना कबूल फरमाए। मैं मस्जिद की इंतजामिया की तरफ से, बल्कि पूरे रशदेल वालों की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उम्मा वेलफेयर का भी और आप तमाम हजरात का भी जो आए, और आने के बाद आप हजरात ने जो है ताउन हमारा ये ब्लेस हमसे लिए और सही मसलक पर लगाने के लिए हमसे हमारी जरूरतों को हमसे दरख्वास्त की और हमने आपकी खिदमत में जो दिया है, अल्लाह ताला आपके इस अमल में खूब बरकत अदा फरमाए और अल्लाह अपनी रहमत से हमारा देना भी कबूल मकबूल फरमाए। वसल्लल्लाहु अलैहि